ओम शांति। बाबा के बच्चे, हम सभी एक एक बाबा का बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, अति भाग्यशाली हम कह सकते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमको चुना है। कहां कहां से चुन करके बाबा इकट्ठे किए हैं, छोटे छोटे गांव से भी बाबा के बच्चे हैं, विदेशों में भी बाबा के बच्चे हैं, तो कहां कहां से बाबा उन बच्चों को चुना है और उन बच्चों को बाबा आप समान बना रहे हैं, और उन कोटों में कोई में हम सभी हैं, है ना? क्योंकि अगर देखा जाए कि माउंट आबू में भी इतने सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन फिर यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, बाबा के घर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, गंगा तट पर जो लोग जो होते तो वो प्यासी रह जाते हैं, लेकिन हमारा भाग्य ऐसा है हम सभी का कि बाबा ने हम सबको चुना है ऐसे सतयुगी दैवी दुनिया में ले जाने के लिए लायक बाबा हमें बना रहे हैं। बाबा का बहुत ज्यादा उम्मीद है हम सभी में, क्योंकि कुछ ना कुछ बाबा ने विशेषता देखी होगी ना, भले अभी साधारण रूप में बैठे हुए हैं, साधारण अपने आप को समझते हैं, लेकिन भगवान का नजर हमारे ऊपर पड़ी है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हमारे अंदर विशेषता जरूर है, तो इसीलिए भगवान का नजर हमारे ऊपर पड़ी है। और पढ़ना बहुत मामूली बात नहीं है, केवल रहम के कारण से नहीं, लेकिन बाबा ये चाहते हैं हम बहुत ऊंच बने। और हमारा लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनने का लक्ष्य है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी, ये हमारा टाइटल है सतयुगी दुनिया का, है ना? अगले जन्म में हमारा टाइटल ऐसा रहेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इस जन्म में हमारा लक्ष्य क्या है? इस शरीर में होते हुए, शरीर छोड़ने से पहले हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? बाप समान फरिश्ता, है ना? वो लक्ष्य है, वो है हमारा लक्ष्य इस ब्राह्मण जीवन का। देवी देवता तो बनेंगे इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में तो जरूर बनेंगे, बाबा ने तो वो गारंटी दी है, है ना? भगवान ने वो गारंटी दी है, जरूर हम सतयुग में जाएंगे, लेकिन कौन जाएंगे, कौन जाएंगे, कौन जाएंगे? आप जाएंगे? जाएंगे आप सभी? कब जाएंगे? कब जाना चाहते हैं? आदि में जाना चाहते हैं या सत्रेता युग के लास्ट में पहुंचना चाहते हैं? सतयुग के आदि में पहुंचना चाहते हैं, राइट? तो सतयुग के आदि में पहुंचना है तो फिर पुरुषार्थ भी उस रीति से करना पड़ेगा, है ना? केवल हाथ उठाने से या बाबा को खुश करने से, बाबा मैं जरूर पहुंचूंगी, मैं जरूर पहुंचूंगा, तो ये नहीं होगा ना। पुरुषार्थ तो हमें जरूर करना होगा। तो पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ कैसा है? फरिश्ता स्वरूप की स्थिति, जब भी कोई हमें देखे, ये अनुभव करे, ये कुछ अलग है। भले स्टार्टिंग में तो उनको पता नहीं चलता है कि ये फरिश्ता है, ये क्या है, लेकिन कुछ अलग है, वो महसूसता उन लोगों को हो, तो कहीं ना उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम पहुंचे हुए हैं, है ना? तो भले 100% तक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सही रास्ते पर हम चल रहे हैं, इसकी निशानी है कि कुछ लोगों को लगने लगता है कि ये हटके हैं, सबसे हटके हैं ये, है ना? और धीरे धीरे ये अनुभव हो लोगों को फरिश्तेपन का, जैसे ब्रह्मा बाप को देख करके लोगों को अनुभव होता था कि आपने ये सुना होगा ना, बाबा ब्रह्मा बाबा अपने जैसे बनियन और धोती पहन करके वो खोपले बना रहे थे, वो नहीं कौडंक ये होता है, तो खोपले बना रहे थे और अचानक कोई दादी आई और दादी आकर के कहा कि बाबा कोई वीआईपी आए हैं आपसे मिलने के लिए। तो बाबा ने कहा कि बच्ची कोई बात नहीं, उसको उस बच्चे को यहाँ ही ले आओ, क्योंकि बाबा हमेशा सबको बच्चा बच्चा कह करके बोलते थे ना, तो कोई बात नहीं बच्ची उस बच्चे को यहाँ ही लेके आओ। दादी ने कहा कि बाबा लेकिन आपका ड्रेस, आप तो बनियन और इसमें है तो कैसे मिलेंगे, और आपके हाथ में पूरा जैसे वो कौडंग लगा हुआ है, पूरा बना रहे थे ना कोपले, क्योंकि उस समय तो कोपले से ही खाना बनता था, वो सब कुछ उसमें से बनता था, तो वो सुखा रहे थे सब। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची उसको यहाँ ही लेके आओ। तो दादी फिर हेजिटेट करते हुए गई और लेके आए, और जब वीआईपी मिले बाबा से, बाबा तो आराम से अपना काम कर रहे हैं, सारा हाथ गंदा है, शरीर तो पाव गंदा है, सब कुछ गंदा है। तो अभी उस आत्मा को साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्ण का लाइट का साक्षात्कार हुआ। तो शरीर की बात नहीं है ना, क्या कर रहे हैं वो बात नहीं है ना, लेकिन स्थिति, बाबा की स्थिति के कारण से सामने वाले व्यक्ति को साक्षात्कार हुआ। ऑफ कोर्स वो तो शिव बाबा का भी चमत्कार होता है, लेकिन फिर दादियों को भी जब हम देखते थे, दादियों को देखते थे तो हर एक आत्मा, जब स्पेशली जब प्रकाशमणि दादी से मिलते थे, हर एक को ये महसूस होता था कि ये दादी मेरी अपनी है, अपनापन महसूस होता था, प्यार महसूस होता था। ये है फरिश्तेपन की निशानी, है ना? हर एक को ये महसूस हो कि अपने हैं, है ना? वो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आंतरिक पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? आंतरिक पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है ना? तो इसलिए बाबा हमें ये लक्ष्य दिया है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अभी इस जन्म में फरिश्ता बनकर के भविष्य में देवता बनने की जरूरत है। फरिश्ता अर्थात पहला डेफिनेशन है जीवन, सब कर्मों से मुक्त, कर्मातीत अवस्था जो जो आत्मा ने अनुभव किया है वो है फरिश्ता। कर्मातीत स्थिति जिसकी है, कर्मातीत स्थिति माना सब हिसाब किताब से मुक्त आत्मा, कोई भी बंधन नहीं, कोई भी खिंचाव नहीं, कोई भी लगाव नहीं किसी के प्रति भी, वो जैसे थोड़ा भी जैसे लगाव खिंचाव ना हो, कर्मातीत अवस्था हो, मुक्त आत्मा, वो है फरिश्ता। तो इसलिए बाबा एक अव्यक्त मुरली में ये कहा है, मुक्त फरिश्ता से जीवन मुक्त देवता बनना है। बाबा हमारा सद्गुरु है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हमें दे रहे हैं, यहाँ हमें मुक्त होना है फरिश्ता। मुक्त फरिश्ता अगर यहाँ बनेंगे तो भविष्य में जीवन मुक्त देवता बनेंगे। और दूसरा डेफिनेशन है फरिश्ता माना सर्व कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण पाने वाले। ये जो भी मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने जो डेफिनेशंस बताई हुई है उन्हीं को मैं बता रही हूँ। बाबा ने एक मुरली में ये कहा कि फरिश्ता माना कर्मेंद्रियों पर विजय। सर्व कर्मेंद्रियों पर जब विजय होते हैं तभी तो हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच सकते हैं। क्या हम मेरा एक एक कर्मेंद्रियों पर मैं विजयी हूं, अपने आप को चेक करने की बात है। क्या समझेंगे? अपने आप को देखते हुए आपको क्या लगता है, सर्वकर्मेंद्रिया जीत है? सर्वकर्मेंद्रिया जीत है, एटलीस्ट पांच कर्मेंद्रिया जीत है, स्थूल कर्मेंद्रिया, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को छोड़िए। सूक्ष्म कर्मेंद्रिया तो है ना, मन और बुद्धि पर भी हमें विजय पाना है, संस्कार पर भी विजय पाना है, उनको थोड़ा बाजू में रख करके केवल स्थूल कर्मेंद्रियों को अगर हम देखें, पांच कर्मेंद्रियों पर विजय है, आंखों पर विजय है, कानों पर विजयी है, मुख पर विजयी है, अपने कर हाथ पैर पर विजयी है, क्या कहेंगे? क्या है उत्तर? नहीं वो आ रहा है, लेकिन अभी नहीं होंगे तो कब होंगे? सूक्ष्म कर्मेंद्रियों तक तो पहुंचे ही नहीं अभी, स्थूल कर्मेंद्रियों पर ही हम ये कह रहे हैं कि नहीं, तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का क्या हाल होगा, है ना? तो एक एक कर्मेंद्रियों पर हमें नियंत्रण पाने की जरूरत है। जब तक हमारा डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक वो नहीं आ सकता है। क्यों वो डिसिप्लिन नहीं हो रहा है? क्योंकि आधा कल्प हमने उसको छूट दिए है, जो करना चाहे कर लो, तो आधा कल्प हमने छूट दिए, 63 जन्मों का संस्कार है, तो जिस कारण से फिर उसको नियंत्रण में लाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो उस पर हमें मेहनत करने की जरूरत है। और इन सभी कर्मेंद्रियों से में से कौन सा कर्मेंद्रिय है जो बहुत चंचल है? बहुत चंचल कौन सा है? आंखें हैं, है ना? कान को भी हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मुख को भी थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आंख जो है बहुत ही चंचल है। लेकिन अगर वो जो हम नियंत्रण कर ले ना, अपनी दृष्टि को नियंत्रण कर ले, तो बहुत सारी शक्तियां हमारी बच जाती है, बच जाती है। क्योंकि यही तो, इसीलिए तो बाबा यहां दृष्टि का महत्व देते हैं, दृष्टि दो एक दूसरे को, है ना? एक दूसरे को दृष्टि क्यों देना है? जब हमारी स्मृति पावरफुल है तो फिर दृष्टि पावरफुल होगा, स्मृति पावरफुल नहीं होगा तो दृष्टि भी पावरफुल नहीं होगा। दृष्टि अगर मेरे आंख इधर उधर घूम रहा है, इसका मतलब है मेरा मन स्थिर नहीं है। और योगी की निशानी क्या है? मन स्थिर हो। अगर मेरे आंख चंचल है, आंख चंचल स्थिर नहीं है, तो मन भी स्थिर नहीं हो सकता। बहुत जल्दी आंखों से हमारी शक्ति नष्ट होता है, बहुत जल्दी होता है। जैसे आप मान लीजिए, आप अगर अच्छी तरह योग करके, सुबह मुरली क्लास हो गया, अमृत वेला हो गया, मुरली क्लास हो गया, बहुत ही शक्तिशाली, आप सब कुछ अनुभव करके, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके, आप मॉल में घूमने जाना, क्या होगा पता है? एक घंटे में जो आपकी जो शक्ति है ना, जो आत्मा ने भरा हुआ है, एक घंटा मॉल में घूमे, तो वो जो भरा है, आप सुबह इतनी मेहनत करके तपस्या किया, मुरली सुनी, सब ये किया, तो एक घंटे में वो खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हुआ वो? एक घंटे में खत्म क्यों? भले आपको खरीदना कुछ नहीं था, लेकिन केवल विंडो शॉपिंग कर रहे हैं आप। विंडो शॉपिंग करने में क्या जाता पता है? आंख जा रहा है ना, आंख डूब रहा है, हाँ ये अच्छी चीज है, ये मुझे चाहिए था, लेकिन छोड़ो, अभी कंट्रोल भी कर रहे हैं, नहीं लेना है, लेकिन ये भी आंख भी डूब रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है, हाँ ये अच्छा ये है, तो वो ध्यान जा रहा है ना वहां। तो इसमें आत्मा की शक्ति नष्ट होता है, डूबता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं योगी की स्थिति ऐसा होना चाहिए तो किसी में भी आंख डूबे ही नहीं। अगर आंखों को कंट्रोल किया ना, दूसरे कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत इजी हो जाता है। तो इस पर हमें फोकस करने की जरूरत है। तो इसलिए जब भी हम योगी को देखते हैं, कैसे पता चलेगा यह योगी है? उनकी आंखों से पता चलता है, उनकी दृष्टि से पता चल जाता है, उनकी दृष्टि कितना शीतल है, कितना शक्तिशाली है, आंखों से पता चल जाता है कितने पावरफुल ये आत्मा है। तो इसीलिए बाबा ने तीसरा डेफिनेशन फरिश्ते का ये दिया है, अपने जो पुराने दुनिया, पुराना शरीर और पुराने संस्कारों से मुक्त, किसी से भी आकर्षण नहीं, किसी से रिश्ता नहीं है, वो है फरिश्ता। पुराना संसार, पुराना देह और पुराने संस्कार, ये बहुत गहरी बात है। पुराना संसार, उसमें आंग डूबता है, आकर्षण होता है अभी भी। मुझे याद है कोई एक बहन, जैसे स्विट्जरलैंड में नई नई सेवाएं जब शुरू हुई थी तो वहां एक बहन थी जो सेवाएं कर रही थी, और जयंती दीदी वहां सेवा के लिए पहुंचे थे, तो कार में लेके जा रही थी वो बहन जयंती दीदी को, और जाते जाते वो बहन दिखा रही थी, दीदी ये देखो इतना सुंदर है, ये देखो इतना सुंदर है। स्विट्जरलैंड तो बहुत खूबसूरत है अपने आप में, तो कितना खूबसूरत है, तो वो दिखा रही थी। लेकिन जयंती दीदी तो एकदम जैसे न्यारी, जैसे वो तो दीदी, फिर जयंती दीदी ने कहा ये सब कुछ खत्म होने वाला है ना, बुद्धि में है ना, ये कलयुगी दुनिया है, भले कितना भी खूबसूरत है लेकिन सत्युग के भेंट में एक क्या खूबसूरत है, खूबसूरत है कुछ नहीं है। जब ये स्वमान जब नहीं है तो फिर हमें आकर्षण होता है कि हम सत्युगी दुनिया के देवी देवताएं हैं, वहां जो अथाह सुख और शांति की अनुभूति हम करने वाले हैं, अथाह संपत्ति की अनुभूति करने वाले हैं, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं इस कलयुग की दुनिया का एक तिनका भी वह सतयुग में जाएगा नहीं। जब ये स्मृति है, स्वमान को बढ़ाने की जरूरत है, हम कौन हैं और कहां जाने वाले हैं, जब स्वमान से हम भरपूर हो जाएंगे तो फिर आकर्षण नहीं होगा। और पुरानी दुनिया में तो कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा आकर्षण होता है, अपने अपने को चीजों पर तो आकर्षण होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा आजकल जो परेशान करके रखा है सबको, वो है मोबाइल, राइट। तो इससे मुक्त कितने लोग हैं, कितने लोग हैं मुक्त? जब भी अब मैंने देखा, अभी जब 15 मिनट ब्रेक मिला, फटक से सब अपने मोबाइल, यहां फ्रंट रो में देख रही हूं कितने सारे मोबाइल जाकर के सिर्फ ब्राउज कर रहे हैं। योग चल रहा है, रेड लाइट चल गया, और रेड लाइट में पता है, एक सीक्रेट बताती हूं आपको, रेड लाइट में पता चलता है किस किस का ब्लू लाइट चल रहा है, किस किस का ब्लू लाइट चल रहा है पता चल जाता है। मैं, योग चल रहा है, गीत बज रहा है, मैं यहां बैठी हूं, फिर भी लोग मोबाइल पर लगे हुए हैं। अभी मधुबन में यहां आए हुए हैं तपस्या करने के लिए, और इतना मदद मिल रहा है संगठन का, वातावरण का, और उस लक्ष्य से यहां आए हुए हैं, फिर भी उस समय का, इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? लाभ उठाना चाहिए ना, क्योंकि पुनः ऐसे नौबत आएगा कि नहीं आएगा, आपको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा ज्ञान सरोवर में आकर के तपस्या करने की, तो ये जो चांस मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाना कि नहीं उठाना है? उठाना चाहिए ना। तो इसलिए एटलीस्ट अभी 1.5 दिन बाकी है, ठीक है, 1.5 दिन तो पूरा हो गया, 1.5 दिन एटलीस्ट इससे तो मुक्त होने की कोशिश करिए। हाँ, आवश्यकता जो है, जो आवश्यक बातें हैं वो जरूर करना है, लेकिन अनावश्यक है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रिय जीत माने स्वराज्य अधिकारी ना, हम स्वराज्य अधिकारी यहां नहीं बनेंगे तो भविष्य में राज्य अधिकारी कैसे हम बन सकते हैं। तो इसलिए जहां जहां मैं अपने आंख डूब रहा है, आप जहां जहां आकर्षण हो रहा है वहां से कट ऑफ करने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि फरिश्ता माना एक के साथ रिश्ता, बाबा एक बाबा के साथ रिश्ता और सभी के साथ जो भी लोग हैं उनके साथ तो रिश्ता रखना है, लेकिन किस प्रकार का रिश्ता। हम ये नहीं कहते ना, बाबा ये नहीं कहते घर बार छोड़ो, संबंध नहीं निभाओ, संबंध निभाना है, लेकिन कैसे कैसे निभाना है, आत्मा समझ करके। ये भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूं, आत्मिक स्मृति से, आत्मिक दृष्टि से हम उन संबंधों को निभाते चलते हैं। लेकिन कई लोगों को ये कंप्लेन बना रहता है, ये बिंदी है ना, वो अनुभव करना मुश्किल है। तो इसलिए बाबा ने ये कहा है कि चलो बिंदी अनुभव करना मुश्किल है, लेकिन फरिश्ता अनुभव करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि बिंदी अति सूक्ष्म है, फरिश्ता तो जीता जागता इतना बड़ा शरीर है ना। तो अपने आप को जितना उस स्मृति में स्थित करते हैं कि मैं एक फरिश्ता हूं, खुद को तो स्थित कर लेंगे लेकिन दूसरों को भी उस नजर से देखे, ये भी एक फरिश्ता है। आज शाम को बहुत स्पेशल भट्टी का प्रोग्राम है, राइट, अभी से ये स्थिति अनुभव करना शुरू करना, ये स्वमान लेना कि मैं एक डबल फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता हूं। ना केवल मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, लेकिन हर एक को डबल लाइट फरिश्ता देखने का अभ्यास हम करेंगे आज पूरा दिन, ठीक है। तो जब हम एक दूसरे को डबल फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ते के रूप में देखना शुरू करते हैं तो उनके कमी कमजोरियों में अपना ध्यान नहीं जाएगा। कमी कमजोरियों में जब ध्यान नहीं जाएगा तो फिर हमारा फिर वो जो कनेक्शन है वो कटना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये दृष्टि हमें अपनाना शुरू करना पड़ेगा कि क्योंकि फरिश्ता अनुभव करना इजी है, आत्मा अनुभव करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो फरिश्ता और हर एक को सूक्ष्म शरीर तो है ना, स्थूल एक है, बाबा कहते हैं एक स्थूल शरीर है और एक है सूक्ष्म शरीर। जितना हम उस सूक्ष्म शरीर का अनुभव करना शुरू करते हैं, फरिश्तेपन का अनुभव करना शुरू करते हैं, तो उस शरीर को, सूक्ष्म शरीर को एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। और सूक्ष्म अगर ये भी एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, जब कोई बीमार पड़ते हैं, चाहे पेट दर्द है, पैर दर्द है, जो जहां भी दर्द है, शरीर को आप वाइब्रेशन देने के बजाय अपने आप को फरिश्ता समझ करके सूक्ष्म शरीर को आप हील करना शुरू करते हैं, जल्दी स्थूल शरीर ठीक होना शुरू होता है। तो सूक्ष्म शरीर में ये ताकत है। तो इसीलिए अभी हम जब हम योग में बैठेंगे, ये स्थिति में बैठे, मैं एक डबल लाइट फरिश्ता हूं। तो फरिश्ते का मतलब इस संसार से रिश्ता नहीं, देखते हुए अनुभव करे, न्यारापन का अनुभव करे। जितना न्यारापन अनुभव करेंगे उतना प्यारा वो व्यक्ति होता जाएगा। तो इसलिए न्यारापन और प्यारापन दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। फरिश्ता माना न्यारा और प्यारा। फरिश्ता हर एक को प्यारा होता है और फरिश्ते को हर एक प्यारा होता है, है ना। तो ऐसा नहीं कि कुछ लोग प्यारे हैं और कुछ लोग प्यारे नहीं है। हर एक के प्रति स्नेह की भावना, हर एक अपने हैं, मैं सबके और सब अपने, है तो फरिश्ता क्या करता है? फरिश्ता जहां भी जरूरत होता है जाकर के मदद करके फिर उड़ जाता है। ऐसा नहीं कि ये मेरा है, मैंने उसकी मदद की है, मुझे रिटर्न चाहिए। नहीं, जहां जरूरत है वहां गए, मदद की और वहां से निकल दिए। प्यारापन भी है लेकिन न्यारापन भी है। आजकल की दुनिया में हम बहुत जल्दी न्यारे हो जाते हैं, ठीक है। किनारा करना बहुत इजी है ना, बातें ना करना ठीक है, दूर रहना ठीक है, वो बहुत इजीली हम कर लेते हैं। लेकिन प्यारे बन करके न्यारे रहना ये चैलेंजिंग है। प्यारे बन के न्यारे रहना मतलब दो हफ्ते पहले संडे की मुरली में भी बाबा ने ये कहा था, प्यारे बन करके किनारा करना। किनारा मना ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है उनसे मुझे नफरत है, डिस्टर्ब हो गई हूं तो इसलिए किनारा कर दो, बात नहीं करे तो ठीक है, तो उसका शक्ल नहीं देखना है। किनारा करना बहुत इजी है, लेकिन बाबा कहते हैं अगर फरिश्ता बनना है तो प्यारा भी रहना है लेकिन न्यारा भी रहना। प्यारा बन करके न्यारा करना है तो मतलब है मेरी भावनाएं हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावनाएं और श्रेष्ठ विचार, हर एक के प्रति शुभ भावनाएं जब होता है तो ग्रेजुअली मेरा स्नेह की भावना होती है और धीरे धीरे। ये बहुत इजी नहीं है लेकिन पुरुषार्थ करने की जरूरत है। अगर प्यारे होकर के न्यारे होंगे तो फरिश्ता हम बन सकते हैं। तो इस आधार से हम संसार से हम न्यारे हो सकते हैं। और तीन बातों में से एक है संसार से हमारा रिलेशनशिप है, जो संबंध है वो न्यारापन होना चाहिए। और दूसरी जो बात बाबा ने ये कही थी, फरिश्ता माना अपने देह से भी रिश्ता नहीं, पुराना देह, पुराने देह से भी न्यारा। हम हुए हैं अपने देह से न्यारे, पुराने देह से भी रिश्ता हमारा ना हो, मन देह भान ना हो। रिश्ता नहीं मन, आत्मा ही शरीर में तो रहना ही है, तो जब तक आत्मा ही शरीर में है तो शरीर तो रहेगा ही, लेकिन देह भान ना हो। बाबा कहने का मतलब है देह भान ना हो। देह भान ना हो इसके लिए क्या करना होगा, बार बार हमारी स्मृति जो है वो चेंज करना होगा, या आत्मिक स्मृति में या फिर फरिश्तेपन की स्मृति में। बार बार जब वो अनुभव करते जाएंगे, उस स्वमान में स्थित होते जाएंगे, देह भान से हम ऊपर उठेंगे। तो इसमें भी बाबा ने दो बात कही है, एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान, है ना। देह भान माना मैं फलानी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, देह के कनेक्टेड जो भी बात होता है, मैं स्त्री हूं, मैं ये कर सकती हूं, मैं ये नहीं कर सकती, देह भान जो इतना मजबूत है, या फिर देह के जो मतलब उसके डेकोरेशन, इसके मतलब उसके देखभाल में, हाँ हेल्थ के लिए तो देखभाल तो जरूर करना चाहिए, हेल्दी तो रहना है ना, उसके लिए एक्सरसाइज करना, अच्छा भोजन खिलाना पड़ेगा इस शरीर को, जो हेल्थ के हिसाब से ही शरीर की देखभाल करना राइट है। लेकिन उसी के बारे में बार बार सोचते रहना, उसी मतलब बाबा को छोड़ करके, पुरुषार्थ को छोड़ करके, इसी के इस देह के बारे में ही बार बार सोचते रहना, ये है देह भान। और दूसरा है देह भान मतलब मेरा पहनाव भी उस रीति से हो, मर्यादित हो, ताकि फिर मेरे देह के प्रति किसी का भी आकर्षण ना हो, ना मेरे देह के प्रति किसी का आकर्षण हो, ना मेरा आकर्षण किसी के देह के प्रति हो। ये है देह भान से ऊपर उठना। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर ड्रेस दिया हुआ है, मर्यादित ड्रेस दिया हुआ है, इसलिए ऐसा मेरे स्थिति हो कि मेरे देह के प्रति किसी का भी आकर्षण ना हो, है ना, क्योंकि वो भी पाप में गिना जाएगा, वो भी बोझ बन जाएगा। अगर मेरे देह के प्रति किसी का आकर्षण हो जाए तो वो भी एक बोझ बन जाता है ना। देहभान से हमें उठने की जरूरत है और दूसरों को भी उनसे ऊपर उठाने की जरूरत है। और दूसरी बात है देह अभिमान। देह अभिमान क्या है फिर? देह अभिमान क्या है फिर? देह अभिमान माना अपने विशेषताओं पर ज्यादा आकर्षित हो जाना कि मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं अच्छा भोजन बना सकती हूँ, मैं अच्छा ये काम कर सकती हूँ, अच्छा सेवा कर सकती हूँ, अच्छा समझा सकती हूँ। तो जो भी विशेषताएं हैं, स्किल्स हैं, तो उसके बारे में बार बार सोचते रहना, ये है देह अभिमान। तो उसको हम परिवर्तन कैसे करें? कैसे करें परिवर्तन? ये देह अभिमान बहुत सूक्ष्म है। जब ब्राह्मण जीवन के पथ पर हम चलना शुरू कर लेते हैं तो काम विकार पर जीत पाना हमारे लिए सहज हो जाता है, क्योंकि वो सब मोटी मोटी चीजें हैं। काम पर विजय पा लेते हैं, क्रोध पर विजय पा लेते हैं, कुछ हद तक लोभ पर भी हम विजय पा लेते हैं, मोह थोड़ा अति सूक्ष्म है उस पर भी हमें मेहनत करने की जरूरत होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो अति सूक्ष्म बात होता है वो है अभिमान। जो पांचवा विकार है वो बहुत ही सूक्ष्म है, उसको हमें पहचानना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर अगर हम बार बार अंतर्मुखी होकर के अपने आप को देखने का अभ्यास करते हैं तो हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि क्या मेरे अंदर वो अभिमान है या नहीं है। तो वो अभिमान निकालने का तरीका बाबा ने ये कहा है, करण करावन हार बाबा है और मैं केवल एक कठपुतली हूं बस, सूत्रधार बाबा है और मैं कठपुतली हूं। अगर बुद्धि पूरी तरह समर्पित है, यह अभिमान नहीं आएगा, मेरे कारण से यह सेवा हुई, मेरे बिना यह सेवा नहीं हो सकती थी, मेरे बिना यह काम नहीं होगा, यह कभी भी संकल्प नहीं आएगा, है ना? मेरा मैंपन और मेरापन जहां भी है, इसका मतलब है ये देह अभिमान है। मैंपन और मेरापन, ये मेरे हैं और मैंपन और मेरापन, जहां भी ये शब्द हम यूज करते हैं मैंपन और मेरापन, तो वहां हम समझ सकते हैं ये अभिमान है। और दूसरा तरीका ये है कि पहचानने का कि अपने अंदर अभिमान है कि नहीं है। दूसरा तरीका बाबा ने ये कहा है, उन आत्माओं को बहुत जल्दी अपमान फील होता है, है ना? इसने मुझे पूछा नहीं, मुझे बिठाया नहीं, मुझे पानी नहीं पूछा, इतनी सेवा की लेकिन टोली नहीं दी, ये अपमान फील कर कब होता है? जब अभिमान है, मैं इतना सेवा करती हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं। हमने अपने लिए किया या दूसरों के लिए किया? जो भी सेवा हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? किसका भाग्य बन रहा है? किसका भाग्य बन रहा है? खुद का ही भाग्य बन रहा है। हम तन मन धन स्वास्थ्य संकल्प जो भी हम लगा रहे हैं सेवा में, किसी और के कारण से हम नहीं लगा रहे हैं, खुद के भाग्य को बढ़ाने के लिए हम सभी ये सेवाएं कर रहे हैं। और रिटर्न में हम एक्सपेक्ट करें कि बाबा तो देंगे ही, वो 100% गारंटी है। एक का 100 गुना कभी देंगे बाबा, एक का 1000 गुना भी बाबा दे देते हैं, है ना? हमारे इंटेंशन पर डिपेंड करता है, किस इंटेंशन से हम सेवा कर रहे हैं उस आधार से बाबा हमें रिटर्न जरूर देंगे, ये गारंटीड है। लेकिन उसके बजाय हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? सेंटर की दीदी हमें पूछे, दूसरे हमें रिकॉग्नाइज करे, दूसरे में हमारी वाह वाह करे, तो ये जब एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो क्या होगा? हमारा भाग्य जो बन रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, क्योंकि रिटर्न मुझे यहां ही मिल रहा है, यहां ही मिल रहा है, तो फिर भविष्य के लिए मेरा जमा ही नहीं हुआ, वो जमा होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर 100% जमा नहीं होता है ना। तो इसीलिए अगर मेरे अंदर अपने अंदर कोई सेंसिटिविटी है कि अपमान, बहुत जल्दी अपमान फील करने की सेंसिटिविटी है, आज ये संकल्प करे कि नहीं, मुझे वो सेंसिटिविटी को निकाल देना है, मजबूत बनना है, मुझे अपनी सेवाएं करनी है और ये अपमान की फीलिंग हमें निकाल देना है। अपमान की फीलिंग जब निकलेगा ऑटोमेटिकली अभिमान निकल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, अभिमान निकालने का तरीका ये है कि पूरे संसार में मैं आत्मा क्या हूं, कुछ भी नहीं है ना, इतने करोड़ों इंसान है, करोड़ों आत्माएं हैं, और ब्राह्मण परिवार में भी अगर देखे इतने सारे बाबा के बच्चे हैं और एक से एक विशेष आत्माएं हैं, और इतने एक से एक विशेष आत्माएं हैं उनके सामने मैं आत्मा क्या हूं, कुछ भी नहीं है ना। तो हम अपना एक अंगुली का सहयोग दे रहे हैं बाबा के यज्ञ में बस, और बाबा का यज्ञ इतना बृहद रूप से सेवाएं हो रही है, मैं केवल अपना भाग्य बना रही हूं। जितना वो अभिमान, देह अभिमान कम होता जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो फिर फरिश्ता बनना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि फरिश्ते के अंदर 1% भी वो अभिमान नहीं होना चाहिए, 1% भी अभिमान नहीं होना चाहिए फरिश्ता माना है ना। पूरी तरह अभिमान से मुक्त, भान से तो मुक्त है ही है, लेकिन अभिमान से भी पूरी तरह मुक्त हो, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। और तीसरी बात बाबा ने ये कहा था कि एक है संसार, एक है देह, पुराना देह, और तीसरा है पुराने संस्कार, है ना। पुराने संस्कारों से भी हमें मुक्त होने की जरूरत है। पुराने संस्कार माना, क्योंकि पुराने संस्कार जो भी है वो भारीपन लाता है। डबल लाइट फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता माना, डबल लाइट फरिश्ता माना, एक है हल्कापन है ना, लाइट माना हल्कापन है ना, बहुत ही हल्के होंगे, बहुत भारीपन, मन शरीर तो छोड़िए लेकिन मन में वो भारीपन ना हो, है ना, वो वेट ना हो मन के ऊपर, बहुत ही मन और बुद्धि बहुत हल्के, बहुत ही लाइट, कोई भी किसी भी प्रकार का बोझ ना हो। तो वो बोझ कैसे निकालेंगे, किस प्रकार के बोझ है मन और बुद्धि पर, जो संस्कार है, पुराने संस्कारों का बोझ है ना, तो वो निकाल कैसे, वो निकालेंगे मन और बुद्धि से। दो प्रकार से हम बोझ महसूस करते हैं, जब भी हम पास्ट के बारे में बार बार सोचते हैं ना, अरे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसके बजाय ऐसा होना चाहिए था, तो ये बार बार जब सोच रहे हैं, जो नेगेटिव बातों को बार बार हम सोच रहे हैं, वो भारीपन आ रहा है। तो इसीलिए आजकल लोगों में डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है, डिप्रेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भले वो कितने भी अच्छे हैं जीवन में, लेकिन एक जो नेगेटिव बात है, नेगेटिव बात को लेकर के बैठे हुए हैं। हजार अच्छी बातें होगी उनके जीवन में, लेकिन एक नेगेटिव बात को वो पकड़ करके बैठे हैं, वो भारीपन ला रहा है। उसके बजाय उसको निकाल करके जो हजार अच्छी बातें हैं उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने जीवन में खुश है, सुखी है, 100% सुखी है, खुश है, यस या नो, 100% है, 100% है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं आपके, अगर बचपन से लेकर के अब तक अगर आप अपने लाइफ को देखें, तो क्या आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से, जीवन से संतुष्ट हैं, जो संतुष्ट है वो हाथ उठाइए, जो संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्यों संतुष्ट नहीं है? कुछ ना कुछ ऐसे सोचते हैं ना कि इसके बजाय ऐसा होना चाहिए था, मेरे परिवार में ये व्यक्ति ना होता तो अच्छा था, ये घटनाएं नहीं घटी होती तो अच्छा था, या फिर मैं ये गलतियां नहीं की होती तो अच्छा था। तो ये पास्ट को देख करके हम हमेशा ये सोचते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है उसको चेंज करने की। पास्ट हो गई ना बात, उसको हम परिवर्तन कर ही नहीं सकते हैं। जो परिवर्तन कर नहीं सकते उसके बारे में सोच सोच करके कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए पास्ट को जितना जल्दी हम फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ेंगे उतना अच्छा है। जब भी कोई गलती करते थे ना, गलती करके बाबा के पास जाकर के सच सच बोलते थे, बाबा मेरे से ये गलती हो गई है ना, तो बाबा क्या कहते थे? कोई बात नहीं बच्ची, कि ठीक है गलती हो गई ना, कि महसूस कर लिया ना, तो आगे से नहीं करना, बाबा यही कहते थे। तो अभी हमें भी ऐसा करना है, जो गलती हो गई ठीक है, उसको फुल स्टॉप लगा करके अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प लाए कि मुझे वो गलती रिपीट नहीं करना है। बस गलती हो गई, उससे सीख सीख करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने ही गलतियों के बारे में बार बार सोचते रहेंगे ना, वो भारीपन लाता है। और दूसरी बात है, दूसरों के बारे में ज्यादा नेगेटिव सोचते कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। बाबा कहते हैं माफ करो, जब तक माफ नहीं करेंगे हम अपने आप को फ्री नहीं कर सकते, अपने आप को हल्का महसूस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जितना जल्दी हम दूसरों को माफ करते जाएंगे उतना हम हल्के हो सकते हैं, है ना, ये हल्कापन। और तीसरे प्रकार के जो भारीपन अपने जीवन में होता है, भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, अरे क्या होगा, भविष्य की चिंता कितने माताओं को है, माताएं ज्यादा सोचती है ना। आजकल ओवर थिंकिंग एक बीमारी हो गई है लोगों में, ज्यादा सोचने की बीमारी। ओवर थिंकिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि डर है भविष्य को लेकर के क्या होगा। बाबा के बच्चों को भी डर है, बाबा के बच्चों को डर है भविष्य को लेकर के? नहीं है, सचमुच सच्ची डर नहीं है। अगर पूरी तरह विश्वास है बाबा में, 100% निश्चय है, तो फिर डर नहीं होगा। बाबा ये कहते हैं खुद में निश्चय और बाबा में निश्चय, चार बातों में निश्चय बाबा ने कहा है ना, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय। अगर निश्चय है तो फिर हल्कापन, निश्चिंत है ना, जो निश्चिंत होगा वो फरिश्ता बन जाएगा। निश्चिंत स्थिति लाने की जरूरत है, जब निश्चिंत स्थिति लाएंगे तब उन संस्कारों से हम ऊपर उठ सकते हैं, पुराने संस्कारों से ऊपर। अपने संस्कार दैवी संस्कार बनाना ना, सतयुगी संस्कार बनाना है, देवी देवताओं के संस्कार बनाने हैं, सतोप्रधान संस्कार बनाने हैं। तो ये सब भारीपन, कई बार हम नेगेटिविटी से मुक्त हो जाते हैं लेकिन व्यर्थ बातों से मुक्त होना थोड़ा समय लगता है। तो इसीलिए पास्ट की बातें और भविष्य की बातें ये वेस्ट बातें होती है। तो इन बातों से जब हम मुक्त होते हैं, हल्कापन, लाइट हम महसूस हो सकते कर सकते हैं। और ये निश्चिंतता इसीलिए है, बाबा बैठा हुआ है ना, बाबा ने ये गारंटी दिया है ना, बच्चे मैं बैठा हूं, बाबा ये दे कहते हैं, बाबा मैं बैठा हूं हुआ हूं, तो बाबा मेरे साथ बैठे हुए हैं, हमें निश्चिंत करने के लिए बैठे हुए हैं ना, तो बार सब कुछ जो भी बोझ है मन का बोझ आज बाबा को दे देना, जो भी चिंता है, जो भी संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं सब कुछ बाबा को दे देना, बाबा उसकी देखभाल कर लेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे यूज करो। जितना बाबा को हम यूज करते जाएंगे, संगम युग में ही यूज कर सकते हैं ना बाबा को, सारे कल्प में तो बाबा को यूज कर ही नहीं सकते। अभी ऐसा समय है, श्रेष्ठ समय है, जब भगवान खुद कह रहे हैं मुझे यूज करो, है ना। जितना बाबा को यूज करते चलेंगे हम बहुत निश्चिंत और हल्के रह सकते हैं। और डबल लाइट माना एक है हल्कापन और दूसरा लाइट है, लाइट माना प्रकाश, है ना। प्रकाश कब बढ़ेगा, लाइट कब बढ़ेगा, पवित्रता की शक्ति। जितना आत्मा के अंदर पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी उतने वो लाइट बढ़ता जाए। यहां जितना हम डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे, भविष्य में डबल ताजधारी बनेंगे। डबल ताजधारी बनना है, सिंगल ताजधारी बनना है। सिंगल ताज तो त्रेता युग में मिलेगा, त्रेता युग के एंड में। तो डबल ताजधारी माना सतयुग के आदि। यहां डबल फरिश्ता, डबल फरिश्ता माना हल्का भी रहना है और प्रकाश, मेरे से लाइट की अनुभूति लोगों को होता चले। और कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि मैं तो अनुभव करती हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ ही, मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती हूँ लेकिन लोग मुझे पहचानते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ ही, दूसरे मुझे पहचानते नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर एक दिया भी जल रहा है ना, तो उसका प्रकाश तो दिखाई देगा। अगर दिया जला करके उसके ऊपर अगर ढकेंगे भी उसका, फिर थोड़ा बहुत तो प्रकाश उसके थोड़ा बहुत जो होल होगा या कहीं से तो उसका प्रकाश दिखाई देने लगता जरूर है। अगर मैं सचमुच मेरे अंदर वो स्थिति है, लोगों को जरूर अनुभव होगा ही, ये 100% निश्चित है। लेकिन अगर दूसरों को अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब है मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे और पुरुषार्थ करने की जरूरत है। मैं अपना सर्टिफिकेट तो मैं खुद को दे दूंगी, लेकिन दूसरे से तो सर्टिफिकेट चाहिए ना कि हाँ सचमुच ये फरिश्ता है। ये सर्टिफिकेट दूसरों से लेना भी जरूरी है ना। तो ऐसे डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति जितना हम इस जन्म में करते जाएंगे, इस ब्राह्मण जीवन में करते जाएंगे, उतना भविष्य में हम डबल ताजधारी, यहां मुक्त फरिश्ता और भविष्य में जीवन मुक्त देवता। इसलिए बाबा ने एक सुंदर फरिश्ता ड्रेस आप सभी को गिफ्ट में आज दे दी है, है ना। वो अनुभव वो पहन करके रखना भी, मैं फरिश्ता हूं। अभी कोई पूछे अभी आप कौन हो, आप कौन हो, केवल फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, आप कौन हो, डबल लाइट फरिश्ता। ये बार बार मन में रिपीट करते रहना, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। वैसे तो मंत्र जाप नहीं करना है, लेकिन अंदर जितना हम रिपीट करते जाएंगे, जितना हम रिपीट करते जाएंगे उतना हम अनुभव करते कर सकते। तो इसलिए अभी से लगातार ये महामंत्र लेके जाना भी, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, डबल लाइट फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, डबल लाइट फरिश्ता हूँ, ये बार बार आज रात तक ये महामंत्र है आपके लिए, है ना। जितना आप ये रिपीट करते हुए अनुभव करते जाएंगे तो आज शाम को बहुत सुंदर आप सभी अनुभव करेंगे, ठीक है। ओम शांति,
ओम शांति। मुझे पूछना तो नहीं था लेकिन आपने मोबाइल के बारे में जो बोला उसके बारे में बताना था कि जैसे हमारी दीदी है वर्षा दीदी, उनके हाथ के नीचे करीब करीब 28 लड़कियां है, लेकिन एक
बहन
बहन है तो उनके पास में एक भी दीदी के पास में मोबाइल नहीं है, और दिया भी तो एक छोटा सा मोबाइल है कोई एक एक दीदी के पास में, यानी एक विशेषता है उनकी, ये मुझे बताना था। ओम शांति।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, के वहाँ पूछना है कुछ, जिनको भी पूछना है जल्दी आ जाइए आगे,
और किसी को पूछना हो तो आगे आ जाइएगा। ओम शांति दीदी। दुनिया में सब लोग मोबाइल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कौन से भी आध्यात्मिक प्रोग्राम लो मोबाइल के ऊपर इतना दोष दे रहे अनगिनत, लेकिन आज के ये सिचुएशन देखकर मोबाइल कुछ होता क्या है? आज मुरली में हम लोग मोबाइल पे सुन रहे, बहुत सारे यूट्यूब के प्रोग्राम सुन रहे, अपन बच्चों पे नाम देते, लेकिन इसके लिए पर्याय क्या हो सकता है, आप क्या गाइड करेंगे? मोबाइल को पर्याय क्या है नेक्स्ट? अभी
मोबाइल से परे,
हाँ नहीं, मोबाइल के बावजूद दूसरा ऑप्शन क्या है ये दुनिया में?
जितना जरूरी है उतना आप यूज करें। बाबा ये नहीं कहते संन्यास ही नहीं बनना है, है ना? तो भले आप कार यूज करें, भले आप सुख सुविधा यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे, लेकिन अपनी उन्नति के लिए आप यूज कर रहे हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। टाइम और आप वो बहुत ही सफलतापूर्वक आप यूज कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, चलो मुरली सुन रहे हैं, क्लास सुन रहे हैं, लेकिन धीरे 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 स्लिप हो गया, दूसरा भी हो गया, दूसरा देख लेंगे, 5 मिनट देख लेंगे, अब हो गया 5 मिनट का 2 घंटे हो गए, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है ना। और संगम युग ब्राह्मण जीवन का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है,
तो
ठीक है, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल करके जितना कम हो सके। ऐसा हम, मेरे पास भी मोबाइल है, 2-2 सिम वाला मोबाइल है, ठीक है, लेकिन जितना यूज करना है उतना भले यूज करें, लेकिन एक्स्ट्रा आप यूज करें तो जितना कम आप वेस्ट टाइम वेस्ट करें तो उतना अच्छा है।
हर चीज के बारे में आपके पास विधि है, तो मोबाइल का कंट्रोल करने के लिए आप क्या विधि सजेस्ट कर सकते हो?
एक पूरा कोर्स बना डाला है अभी, डिजिटल वेलनेस, एक आईटी विंग वालों ने बहुत एक बहुत सुंदर कोर्स बना दिया है, और उसमें ये भी बहुत सारे टिप्स हम दे रहे हैं। और मतलब रात को जितना हम जैसे डाइटिंग करते हैं ना, हफ्ते में एक दिन कहते हैं, हफ्ते में एक दिन उपवास रखेंगे तो फिर शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या हफ्ते में एक दिन आप मोबाइल डाइटिंग कर सकते हैं?
पॉसिबल है।
और या फिर एक दिन नहीं कर सकते तो कुछ घंटों के लिए आप मोबाइल डाइटिंग कर सकते हैं, और केवल इतने बजे से इतने बजे मैं मोबाइल यूज करूंगा, इतने बजे से इतने बजे मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा, जैसे 9 बजे में रात को 9 बजे बंद करके सुबह 9 बजे खोलेंगे, ऑन करेंगे, तो क्या कुछ घंटों एटलीस्ट मोबाइल बंद करें। और जितना हम मोबाइल से दूर रहेंगे तो उसके रेडिएशन से भी, आप सभी को पता है, इस ज्ञान से तो कोई ये नहीं है कि सबको पता है कि मोबाइल के रेडिएशन कितना खतरनाक है ब्रेन को, है ना, बॉडी पर भी कितना उसका खतरा है ही है, तो सब कुछ पता होते हुए भी हम उसको यूज कर रहे हैं, राइट? तो जितना कम यूज करें उतना अच्छा है, इसलिए तो सिगरेट पैक के ऊपर पे तो लिखा हुआ होता है इट इज इंजोरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी वो पढ़ेंगे फिर पिएंगे, आदत, आदत से मजबूर हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मोबाइल भी एक एडिक्शन हो गया है, उससे उसको ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि टू लेट ना हो जाए, है ना?
थैंक यू, ओम शांति।
क्योंकि ऐसे ऐसे किस्से हम सुनते हैं मोबाइल एडिक्शन के, एक बच्चे बच्ची को बहुत एडिक्शन हो गया था, और उसकी माँ ने कहा कि चलो एग्जाम पूरा होने तक तुमको मोबाइल नहीं, 2 महीना तुमको मोबाइल नहीं देंगे, मोबाइल छीन लिया उन बच्ची से, वो फिर वो अपने मम्मी को मारने तक आ गई, वो बाथरूम में सोप फैला दिया ताकि वो मतलब स्किड होकर के गिर के मर जाए, या कुछ ऐसे पॉइजन डाला उसमें चाय में, तो मतलब बच्चों की बुद्धि इतना भ्रष्ट होता जा रहा है इस मोबाइल एडिक्शन के कारण से। है ना, कहीं ना कहीं हमें ब्रेक लगाना जरूरी है।
ओम शांति दीदी। लौकिक में जॉब करता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। सैटरडे संडे ऑफ रहते तो सैटरडे संडे में तो स्थिति बन जाती है, और उसका फायदा मंडे और ट्यूसडे दो दिन अच्छा होता है, यानी आत्मिक स्थिति रहती है जब कर्म करते वो समय। लेकिन उसके बाद में जो तीन दिन है ना वह कम हो जाता है, तो इससे कैसे आगे आए?
इसलिए बीच बीच में ऊपर जाने की आदत डालना है। बीच बीच में कभी भी आप बैठे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बड़ा बुद्धि को ज्यादा काम नहीं है, फिजिकली आप काम कर रहे हैं लेकिन बुद्धि को ज्यादा काम नहीं है, तो उस समय आप अपने शरीर से डिटैच होकर के परमधाम तक अपने मन और बुद्धि को ले जाने की आदत डालनी होगी। जितना आप अशरीरीपन का अभ्यास, फरिश्तेपन का अभ्यास, और वो भी बहुत ही पावरफुल जो है तीसरा जो मैं अभी कह रही हूं वो है मन और बुद्धि को बार बार परमधाम तक ले जाने की आदत।
अच्छा,
तो फिर शरीर के भान से आप डिटैच होंगे जितना आप ऊपर ले जाएंगे, तो वो एक पावरफुल कैप्सूल का काम करेगा रिचार्ज होने में, तो वो फिर आप ड्रेन्ड आउट फील महसूस नहीं करेंगे। फिर आप जितना भी सेवा करो,
हुआ तो कुछ भी हुआ आज करके ही लेना है, मैं या टीममेट जो है, टीम मेंबर जो है उनको रुकवा के ऐसा करके फिर आज के डेट पे देना ही है, तो वो समय नहीं,
वो तो सब जॉब्स में ऐसा ही होता है ना, करके देना ही
होता है।
वो तो करना ही होगा, लेकिन फिर स्थिति को मेंटेन करते हुए सब कुछ करना है। लेकिन आप टेंशन में आएंगे तो काम बिगड़ेगा, है ना। तो शांति की स्थिति में फिर अब जितना आप करते हैं, अब आपकी बुद्धि शांति की स्थिति में ज्यादा काम करेगा। अगर टेंशन में आएंगे बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए वो अभ्यास करना है, शांति की स्थिति और आत्मिक स्थिति का अभ्यास, परम धाम जाने का अभ्यास, ये बार बार आप अभ्यास करते जाएंगे तो फिर आपकी जो स्पीड है सेवा करने की या काम करने की, तो वो भी स्पीड बढ़ेगा और फिर कम समय में ज्यादा आउटपुट दिखाई देने लगता है।
ओम शांति
दीदी। ओम शांति। समय के हिसाब से खाली एक मिनट लूंगा। बाबा भी हमेशा सावधानी देते हैं, बच्चे दूसरे का जज नहीं बनो, खुद का जज बनो। वैसे अभी खुद का सर्टिफिकेट तो खुद देते ही है, लेकिन दूसरे का सर्ट मिलना बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा अभी आपने भी बताया है कि डबल फरिश्ता बनने का, वो डबल फरिश्ता बनने के लिए थोड़ा सा विधि क्या है जो इमीडिएट अपन वो विधि से खुद को महसूस कर सकते, अपना कर्म भी बना सकते, तो ऐसा
विधि वही बोला ना, तीन बातें बाबा ने ये कही है ना, ये पुराने संसार से रिश्ता उसको बदलने की जरूरत है, तमो प्रधान कलयुगी संबंध से सत्व प्रधान संबंध हर एक को बदलने की जरूरत है ना। संसार के साथ मेरा रिश्ता पॉजिटिव हो, इस शरीर के साथ रिश्ता मेरा कैसा है वो देखना है, और तीसरा है संस्कार, संस्कारों को शुद्ध बनाते जाना। ये तीनों को हम ठीक करेंगे डबल लाइट फरिश्ता बन सकते हैं,
पोजीशन। ओके, धन्यवाद। ओम शांति
दीदी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन।
प्रश्न तो नहीं था लेकिन अभी मोबाइल के बारे में आपने जो बताया, तो हमारी सोसाइटी में उससे एक दुर्घटना बोल सकते हैं, मोबाइल जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मम्मी पापा थोड़े समझदार हो जाने तो मोबाइल उनके हाथ में दे दिया करते कि उन्हें तंग न करे, परेशान न करे। तो हमारी सोसाइटी में मैंने एक बच्चे को ऐसा देखा, अभी 3.5 साल का हो गया, उसे केजी वगैरह में एडमिशन भी दिलाया, लेकिन उसका उपयोग समझो या दुरुपयोग समझो आज की तारीख में वो बोल नहीं पाता है, उसे बोलने में भी दिक्कत आती है और सुनने में भी दिक्कत आती है। तो उनके माता पिता ही आज की तारीख में बोलते हैं, हम लोगों ने जब इसे फोन दिया था इसको यूज करने के लिए, हमें नहीं पता था कि इसकी असर इतनी तगड़ी हो गई। आज भी ये यहाँ पे
सबको पता है, ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी पता नहीं है कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, और पढ़े लिखे माँ बाप है तो उनको और ही पता होता है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं देना चाहिए, ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगेंगे बच्चों के अंदर। अच्छा, बोलने की आदत फिर उनको वो अभ्यास नहीं होगा और ब्रेन अच्छा डेवलप नहीं होगा उनका, तो ये सब कुछ।
हाँ, लेकिन वो बच्चे तो ना समझ होते हैं, कभी कभी हम लोग अपने से छुटकारा पाने के लिए भी ना समझ बन जाते हैं
जी।
बस ये बता नहीं था
जी, कई बार ये होता है ना कि बच्चों के लिए टाइम नहीं दे सकते हैं, तो ये बहुत सहज विधि है कि मोबाइल दे दो, वो चुप रहेंगे तो अपना काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन बच्चों से छुटकारा पाने के लिए मोबाइल दे करके माँ बाप और ही उनके जीवन फिर बिगड़ जाता है, वो तो राइट बात है।
ओम शांति दीदी।
अच्छा, लास्ट
ओम शांति।
जी ओम शांति।
मुझे लगता है मेरा जीवन व्यर्थ गया है।
व्यर्थ गया?
हो, क्योंकि मेरी शादी से मैं पूरा देवर्ष हो गया, किसी के साथ नहीं आई।
हाँ, किसी के साथ? थोड़ा माइक
पकड़ के,
संसार में किसी के भी साथ नहीं आई, कोई मेरा नहीं है, इसीलिए मैं इधर आया बाबा को बोल के, मैं क्या करूं, किसी को सहायता करे तो मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा, कोई साथ नहीं दे रहा है।
कोई साथ नहीं देता है, कोई नहीं, बाबा साथ है ना आपके?
बाबा के साथ है।
तो बाबा जब साथ है तो फिर लोगों का साथ हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है?
अभी यहाँ आया है, घर में जाना नहीं लगता।
नहीं जाना है?
हाँ। किधर तो अपना यंत्र तक पूरा जीवन बिताना, किसी को कोई जरूरत नहीं मेरी,
बाबा को जरूरत है ना, इसीलिए आपको छूना है, भगवान को आपकी जरूरत है
ना।
किसी लोगों, किसी व्यक्ति को आपकी जरूरत नहीं है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को आपकी जरूरत है।
और मेरा नेक और विचार ऐसा है, हे भगवान सबका भला कर,
ये शुभ भावना दिल से हमेशा बना के रखना कि हर एक की भलाई हो,
मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, ना मांग के मिलना, ये मेरा धर्म है
जी,
मांग के तो मिलता नहीं, कैसे मिलता नहीं, और मुझे क्या जरूरत है चार दिन।
अरे आप कभी रोना नहीं अभी, ठीक है, अभी कभी ये नहीं सोचना मेरा कोई नहीं है, भगवान आपका है,
ये तो है ना, इसके ऊपर तो जी रहा हूं मैं,
हमेशा ये गुणगान, ये हमेशा ये सोचना, मैं बाबा का और बाबा
मेरा,
मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये रिपीट करते रहना मन में, ठीक है।
नन्नी सी पर
आंटी, मुझे लगता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ गलत करती हूँ।
अच्छा, ओके, क्या गलत करते हो?
मुझे नहीं पता।
नहीं पता? आप गलत करते हो तो पता भी नहीं आपको गला आप गलत किया है। हाँ जी बोलिए, आप क्या और क्या पूछना चाहते थे?
मैं यही पूछना चाहती थी।
यही पूछना चाहते हैं तो आप गलत कर रहे हो?
मुझे नहीं पता,
पता
नहीं, हमेशा लगता है।
इग्नोरेंस इज ब्लिस, अच्छा है, नहीं पता है तो अच्छा है, ठीक है। क्या उम्र है शरीर का? हाउ ओल्ड आर यू?
7, 8।
8 years। आत्मा बहुत पुरानी है ना, 5000 वर्ष पुरानी है आत्मा।
ठीक है,
कोई बात नहीं, केवल बाबा को याद करना प्यार से, जब भी आप उठते हो बाबा को गुड मॉर्निंग करना, ठीक है, जब सोते हो बाबा को गुड नाइट करना, है ना, बीच बीच में बाबा को याद करना, ठीक है,
ठीक है,
वो काफी है आपके लिए,
ठीक है,
ठीक है, ओके।